بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن وَيَنْقَ الصُّحْ وَيَقْصَرَ الْحَرَجُ قَالُوا وَمَا الْحَرَجُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْقَتْلُ رَوَاهُ الْبُخَارِي وَمُسْلِمُ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، زمانہ قریب قریب ہو جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا اور فتنے نمودار ہوں گے اور انسانی طبیعتوں اور دلوں میں بخل ڈال دیا جائے گا اور حرج بہت ہو جائے گا. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ حرج کا کیا مطلب؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس کا مطلب ہے قتل، قشط و خون. یہ روایات جو آپ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان روایات کا تعلق فتن سے. حضرات محدثین نے اس عنوان سے مستقلاً اپنی اپنی کتابوں میں کتاب قائم کی ہے، اس کا نام ہوتا ہے کتاب الفتن. اس میں فتنوں کی روایتوں کو میں نے کل بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے حالات جو ہیں وہ بہت کھولے گئے، اللہ کی طرف سے قیامت تک کی باتیں آپ کو بتائی گئی. اسی لیے حضرت فرماتے ہیں اوتی تو علم الاولین والآخرین، مجھے پہلے جو حالات گزرے اس کا بھی علم اللہ نے دیا اور آئندہ جو حالات آنے والے ہیں اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا. تو آئندہ جو حالات آنے والے ہیں اس کا علم دیا، مطلب یہ ہے کہ اچھے حالات کا بھی علم، برے حالات کا بھی علم. برے حالات کا مطلب فتنے وغیرہ کے مسائل. اسی میں یہ روایت بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یتقارب الزمان. ویسے تو بہت ساری باتیں حضرت نے ذکر فرمائی ہے، مثلا حدیث جبریل میں حضرت نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا، علامات ساعت میں، قیامت کی علامتوں میں حضرت نے فرمایا کہ امت کا گرا پرا طبقہ اوپر ہو جائے گا، جن کے معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں، سوسائٹی میں کوئی عزت نہیں، وہ بڑے بنیں گے. اور اولاد ماں کی نافرمان ہو جائے گی. اگرچہ اس روایت کے مطلب میں بہت سارے محدثین نے بہت کچھ لکھا ہے کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی، ان تلد الامت ربتہا، باندی اپنے آقا کو جنے گی، اس کے مطلب میں بہت سارے مطالب ہیں، لیکن ایک سیدھا سا مطلب جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ بیٹا اپنی ماں کا نافرمان ہو جائے گا اور ماں کو باندی اور نوکرانی کی شکل میں استعمال کرے گا. آج وہ وقت آ گیا ہے. انگلینڈ میں، میں جگہ کا نام نہیں لیتا، ابھی رمضان کا واقعہ ہے، ایک صاحب میرے پاس آئے اور مجھے کہا میرے بچے سے متعلق کوئی تعویذ دو. وہ مجھے بہت ستاتا ہے، بلکہ ہاتھ بھی اٹھاتا ہے، और ये कहता है कि जब तक मैं तुझे कब्रिस्तान नहीं पहुंचाऊंगा छोड़ूंगा नहीं। खैर मैंने तावीज वावीज जो कुछ थी दे दी और मैंने कहा कि औलाद की तरबियत करें। मैंने उनको एक बात ये भी कही, मैंने कहा जब बहुत जुल्म कर रहा है तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, जब आपको बहुत ही तो बाप बाप होता है। बाप ने कहा कि कहां बोल साहब, अब उसको फिर वो जेल में जाएगा तो फिर मुझे ही तकलीफ होगी। खैर और एक साहब के सामने मैंने ये बात कही, मैंने कहा भाई फला साहब बड़े दुखी है, तो उन्होंने कहा कि मल साहब हमें पता है कि इसने भी अपने बाप के साथ इस शहर में ऐसा ही किया था, वो भी अपने बाप के साथ ये जुल्म करता था। तो आज ये मेरी नजर अभी रमजान का वाकया है, जाहिर सी बात है कि अल्लाह का जो निजाम है वो एक मुसल्लम मसला है। तिर्मिदी शरीफ की रिवायत में हजरत ने 14 निशानियां बयान फरमाई कयामत की, गाना आम हो जाएगा। आज देख लीजिए लोग औरतों के मशवरे पर दीन को छोड़ देंगे, अजाम हो गया। वक्फ के माल को अपनी मिल्कियत समझेंगे, आज देख लीजिए माल फै को गनीमत समझा जाएगा। और उसी रिवायत में हजरत ने फरमाया अक्का उम्महू व अक्का अबूहू व अदना सदीकहू, बाप को लात मारेगा, मां की नाफरमानी करेगा और दोस्तों से मोहब्बत करेगा। आज हो रहा है मस्जिदें शोर से भर जाएगी, आज हो रहा है। हजरत ने उस वक्त बयान फर जब तसव्वुर नहीं हो सकता था कि मस्जिद में इतना शोर होगा। बुखारी शरीफ में तो ये आया कि दो आदमी बातें कर रहे थे अब्वाबुल मसाजिद में है, तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने हजरत अनस से चुपके से फरमाया कि इन दोनों को बुला कर लाओ। बाहर बुलाया और फरमाया मिन अयन जीतुमा, तुम कहां से आए हो? का मिन ताइफ, का ताइफ कहा अगर तुम मदीने के होते तो मैं इस कोरे से तुम्हारी पिटाई करता, इसलिए कि तुम मस्जिद में बैठकर जोर से बातें कर रहे थे। दो आदमी की बात हजरत को बर्दाश्त नहीं, इतना शोर तो कहां बर्दाश्त होगा। हजरत ने फरमाया मस्जिद शोर से भर जाएगी। ऐसी 14 निशानियां हजरत ने बयान फरमाई और फरमाया कि जब तुम इन हालात को देखो तो अब इंतजार करो जलजलों का, इंतजार करो सुर्ख पत्थरों की बारिशों का कि तुम पर अल्लाह बारिश बरसाएगा। ये सब नबी के सामने हालात खोले गए। बहुत जमाने के बाद मुझे इमाम नववी की एक तशरीह याद आई, फरमाया एक हवा चलेगी, ये तो सही रिवायत मुस्लिम शरीफ में है, बाद रिवायतों में है कि यमन से चलेगी, एक आग चलेगी यमन से, और बाज रिवायतों में है कि शाम से चलेगी। अब अगर आग का हकीकी माना लिया जाए तब तो कोई मतलब ही नहीं कि कुर्बे कयामत में एक आग चलेगी और सब भागेंगे, लेकिन इमाम नववी ने एक मतलब और भी लिया है। हजरत इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इससे फितने मुराद है, यानी फितने की आग चलेगी जो बहुत से लोगों को अपने लपत में ले लेगी। अगर फितने की आग मुराद ली जाए तो इस वक्त यमन भी सिलग रहा है, शाम भी सिलग रहा है। बहुत मुमकिन है कि हजरत ने इसी तरह इशारा फरमाया हो। तो कई रिवायात में हजरत ने कयामत की निशानियां बयान फरमाई, ये होगा ये होगा ये होगा। उन्हीं में फरमाया ये तकारब उस जमान, कयामत से पहले जमाना करीब हो जाएगा। तो क्या 24 घंटे का दिन है तो 12 घंटे का हो जाएगा? जमाना करीब कैसे होगा? मुहद्दिसीन ने इसको भी बहुत खोला, फरमाया कि शहवतें इतनी आम हो जाएगी कि लोगों को अपने वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलेगा, शहवतें आम होगी। और इंसान जब शहवत में मुब्तला हो जाता है ना, तो उसको टाइम कहाँ गुजरता है पता ही नहीं चलता। देखो एक इंसान शब अव्वल में निकाह करके बीवी से मिलता है, सुबह कहाँ होती है उसको पता ही नहीं चलता। तो जब शहवत में मुब्तला हो जाता है तो उसको ये पता ही नहीं चलता कि मेरा वक्त कहाँ गुजर रहा है। वो यही देखता है अभी शाम हुई, अभी सुबह हुई, अभी सुबह हुई, अभी शाम हुई। ये है दूसरा मतलब। मुहद्दिसीन ने यह बयान फरमाया कि हालात बहुत आ जाएंगे लोगों पर, मसाइब परेशानियां। इस पर सवाल यह है कि हालात और मसाइब और परेशानियां जब आती है तब तो इंसान को पता चलता है कि भाई ये वक्त गुजरा। रात में दर्द का दर्द शुरू होता है तो घड़ी देखते रहते हैं, अभी सुबह ही नहीं हुई, अभी सुबह ही नहीं हुई, अभी सुबह ही नहीं हुई। वो तो वक्त का पता चलता है। तो दुखों की वजह से वक्त करीब कैसे होगा? फरमाया हालात इतने होंगे कि एक मुसीबत से नहीं निकला कि दूसरी, और दूसरी से नहीं निकला कि तीसरी। इन मुसीबतों में चलता रहेगा और इसकी वजह से उसको सोचने का वक्त ही नहीं मिलेगा। और एक तीसरा मतलब ये बयान फरमाया इसका कि यह तकारब उस जमान का मतलब होता है बरकत खत्म हो जाएगी। ये इस वक्त बिल्कुल साबित आ रहा है। देखिए अभी रमजान गया था, अभी आ गया, अभी जुमा गया, अभी आ गया, अभी सुबह हुई, अभी शाम हो जाएगी। वक्त से बरकत खत्म हो जाएगी। हक ताला वक्त से बरकत को खत्म कर देगा। हमारे अकाबिर का दौर वो था कि वो एक एक दिन में कई काम कर लिया करते थे, हम दिन में एक काम नहीं कर पाते। हमारे बुजुर्गों ने दिन कितना काम करते थे, हमसे एक काम नहीं हो पाता। तो बरकत खत्म हो जाएगी, या दुखों का दरिया बह जाएगा, या ख्वाहिशात आम हो जाएगी, और ख्वाहिशात में पड़कर इंसान को वक्त का पता ही नहीं चलेगा। यतकारबु जमान, फरमाया जमाना करीब हो जाएगा। और आगे फरमाया इल्म उठ जाएगा। इल्म उठने की शक्ल क्या होगी? दूसरी रिवायत में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेकब्ज़िल उलमा, अल्लाह ताला उलमाए मुतबहर को, उलमाए सहीहा को अल्लाह उठा लेगा। उनके सीनों में जो उलूम है वो भी उसके साथ चले जाएंगे। और उलमाए मतबहर और जो उलमा आला दर्जे के सही है, फिर जब वो जाते हैं तो उनकी जगह खाली होती है, उनकी जगह को पूर करने वाला कोई नहीं होता। तो उलमा उठ जाएंगे। अब सवाल ये होता है कि इल्म उठा लिया जाएगा, हालांकि हम तो ये देखते हैं कि इल्म और बढ़ रहा है। अभी तो पहले इतनी किताबें नहीं लिखी गई, इतनी किताबें अब लिखी जा रही है, तो इल्म तो बढ़ता जा रहा है। नबी अलैहिस्सलाम की मुराद ये है कि तकवे वाला इल्म उठ जाएगा। आज किताबों की तो भरमार है, लेकिन इल्म के साथ तकवा देखो तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। इल्म नहीं है, मालूमात है। इल्म और मालूमात में फर्क है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा इल्म किसको कहते हैं, फरमाया अल इल्म नूरुन, इल्म एक नूर है। यन्फुज़हुल्लाहु तबारक व तआला अला क़ल्ब मन शा, इल्म तो एक नूर है जो दिल को मुनव्वर करता है, हक तआला चाहता है उसके दिल पर डाल देता है। तो आज जो है इंटरनेट के जरिए से बहुत सारी चीजें पढ़ ली, ये मालूमात है, इल्म नहीं है। इल्म उसको कहते हैं जो तकवा लाता है। तो तकवे वाला इल्म खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला तकवे वाले इल्म को उठा लेगा। फिर एक तीसरी बात यह है कि बाज़ रिवायतों में यूं आया है कि हक ताला कुरान के हरूफ ही को उठा लेगा। इसका जवाब यह है कि पहले तो अल्लाह उलमा को उठाएगा, और बिल्कुल आखिरी दौर जब कयामत का होगा तो उस वक्त हक ताला कुरान के औराक और कुरान के हुरूफ को भी उठा लेगा। तो भाई इल्म का उठ जाना यानी तकवे वाले इल्म का उठ जाना। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं कि देखो हमारे बड़े बुरे जो पहले थे जहां से हम आए हैं उनका हाल ये था कि उनके पास इल्म कम था, अमल ज्यादा था, इल्म कम था अमल ज्यादा था। आज इल्म बहुत हो गया, अमल नहीं रहा। तो अल्लाह ताला हमें इल्म की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। आगे फरमाया वयुजहरुल फितन, फितने बहुत हो जाएंगे, बहुत जाहिर होंगे, तरह तरह के फितने। अल्लाह के नबी ने फरमाया उन फितनों से बचना है तो हजरत ने फरमाया घर में रहो। एक जगह फरमाया जबान का फितना बहुत बड़ा, इससे बातें निकलती है, इंसान फितने में मुब्तला हो जाता है। एक जगह फरमाया आंखों का फितना बहुत बड़ा। एक जगह हजरत ने इरशाद फरमाया कि आपस में गुफ्तगू का फितना बहुत बड़ा। ये सब फितने हैं। हजरत ने फरमाया जब फितने चलते हैं तो उस फितने में सोने वाला अफजल है बैठने वाले के मुकाबले में, बैठने वाला अफजल है खड़े होने वाले के मुकाबले में, और खड़ा होने वाला अफजल है चलने वाले के मुकाबले में। जो चलेगा फितना उसको पकड़ लेगा। आज देख लीजिए कैसे चारों तरफ से फितने अपनी लपेट में हमको ले रहे हैं। फरमाया फितने आम हो जाएंगे और बुख्ल आम हो जाएगा। बुख्ल का आलम यह होगा कि इंसान खुद भी खैर के रास्ते में खर्च नहीं करेगा, दूसरों को भी रोकेगा इसको मत दो, बहुत बुरी आदत है। बुख्ल आम हो जाएगा। बखीली से अपने आप को बचाओ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंसान की तबीयत में सबसे बड़ी बीमारी बुख्ल है, सबसे बड़ी बीमारी बुख्ल है। फरमाया जब बुख्ल होता है तो इंसान हरीस बनता है, माल का लालची। जब बुख्ल होता है तो खैर के रास्ते में खर्च नहीं करता। जब बुख्ल होता है तो खैर को रोकने वाला होता है। बुख्ल बदतरीन चीज है। सिद्दीक अकबर को एक मरतबा हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला ने कहा कि अल्लाह के हबीब ने मुझे इतने पैसे देने का वादा किया था और हबीब तो जा चुके दुनिया से। सिद्दीक ने तवज्जो नहीं की, फिर कहा तवज्जो नहीं की, फिर कहा तवज्जो नहीं। चौथी मरतबा जाबिर ने फरमाया या तो दीजिए या बखील बनिए। सिद्दीक को यह जुमला कहा तो सिद्दीक अकबर ने फरमाया तू मुझे बखील कहता है, मेरे नबी से मैंने सुना बुख्ल से ज्यादा बदतर बीमारी कोई नहीं, आओ मैं तुम्हें देता हूं। तो बखीली बदतरीन चीज है। हदीस में आता है अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि एक इंसान के पास माल होता है तो वो बखीली करता है, और जब मौत के करीब पहुंच जाता है तो ले फलान इन कजा वले फलान इन कजा, फलाने को इतना दे दो, फलाने को इतना दे दो। अल्लाह के नबी कहते हैं खैर ये भी कबूल है लेकिन तू जरूरत के मौके पर खर्च करता, जब तेरी जवानी थी और बुख्ल था उसके बावजूद तू खर्च करता तो उस वक्त का सवाब ज्यादा होता इस वक्त के मुकाबले में। तो भाई बखीली से अपने आप को बचाया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क्या फरमाया, मेरे पैगंबर आप गरीब थे, हमने आपको खदीजा से मालदार बनाया। ووجد قائلا فاغنى, तो अब आपका काम यह है वह السائل فلا تنهر, तेरे दरवाजे पर आने वाले को पैगंबर कभी न दुत्कारना, कभी न दुत्कारना। और अजीब व गरीब बात, फरजदक शायर ने यूं कहा, फरजदक बहुत बड़ा शायर गुजरा है, बहुत बड़ा। चलिए बात आई तो मुख्तसर अर्ज करूं। फरजदक से किसी ने पूछा कि तुम्हारा इस्लाम जालिम है। कहा कैसे? कहा 10 दिरहम की चोरी करता है तो कहते हैं हाथ काट डालो। अच्छा, और एक तरफ तुम्हारा इस्लाम कहता है कि किसी ने जुल्मन उंगली काट दी तो 10 ऊंट दियत दो, 10 10 10 10 10, तो 2 हाथ के 20, यानी उसको 100 ऊंट देने पड़ेंगे बदले में। तो कहा एक तरफ एक उंगली पर 10 ऊंट और एक तरफ 10 दिरहम की चोरी पर हाथ। तो फरजदक ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, इदा कानत अमीनुन समीनुन इदा खानत हानत। फरमाया जब तक हाथ अमानतदार था बड़ी इज्जत थी कि एक उंगली के काटने पर भी शरीयत ने 10 ऊंट दिलाए, और जब खयानत की और चोरी की तो जलील हो गया, 10 दिरहम में भी काट डालो। तो फरजदक बहुत बड़ा शायर गुजरा है, बहुत बड़ा। उसने अपने शेर में एक अजीब बात कही, पैगंबर की जबान पर कभी ला नहीं आया। ला का माना नहीं, पैगंबर की जबान पर कभी ला नहीं आया। फिर आगे कहा पैगंबर ने ला सिर्फ एक ही जगह कहा, لا الہ الا اللہ, اس کے علاوہ لا کہا ہی نہیں, نہ کہا ہی نہیں کسی کو. تو وہ اما السائل فلا تنہر, مانگنے والے کو جھرکو مت. فرمائے میری امت پر ایک دور آئے گا بخل عام ہو جائے گا, بخیلی عام ہو جائے گی, اللہ بخل سے ہماری حفاظت کرے. اور فرمایا آگے ویکسر الحرج, قتل عام ہو جائے گا. آج دیکھ لیجئے دنیا میں قتل عام ہے, روزانہ کہیں 50 کہیں 60 کہیں 100 کہیں 200 کہیں 500. اللہ اکبر. صحابہ فرماتے حرج کا کیا معنی یا رسول اللہ؟ فرمایا قتل عام ہو جائے گا. یہ ساری کی ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں بیان فرمائی ہے, اور یہ ساری نشانیاں ہمارے سامنے ہیں, ساری نشانیاں ہمارے سامنے. متبحر متقی علماء اتتے بھی جا رہے, وقت سے برکتیں بھی ختم ہو رہی ہے, اسی کے ساتھ ساتھ قتل بھی عام ہو گیا, بخل بھی عام ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان بری صفات سے ہماری حفاظت فرمائے. دیکھو بھائی قیامت تو آنی ہے, یہ ایک مسئلہ مسلم ہے, قیامت اپنی جگہ آنے ہی والی ہے, لیکن اس کا سبب ہم نہ بن جائیں. کوئی بننے والے بنے, کم سے کم ہم تو ان برائیوں سے بچنے والے بنے. حق تعالی ان برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.